नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा भंग की। मुख्यमंत्री अतिशी ने अपना इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में आम आदमी पार्टी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अमरीका ने हमास से सभी शहीद इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में करीब 31 माओवादी मारे गए हैं। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अतिशी ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। सुश्री अतिशी अपने कालकाजी सीट बरकरार रखने में सफल रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते पद से त्याग पत्र देने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से बाहर कर 27 साल बाद धमाकेदार वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीतकर विजय हुई। 26 वर्ष से अधिक समय के बाद भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें जीती, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद अगले सप्ताह भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को आश्वासन दिया है कि आम आदमी पार्टी की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। कल भाजपा मुख्यालय में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उल्लेखनीय है कि सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की अबकारी नीतियों में अनियमितताओं के कारण राजस्व में 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 890 करोड़ रुपए का नुकसान पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले सरेंडर किए गए लाइसेंस को फिर से टेंडर देने में सरकार की विफलता के कारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छात्रों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपन में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 36 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न स्कूलों से किया गया है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन संयम प्रभा, प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनल और शिक्षा तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल ही फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। उनकी यह यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो के नियंत्रण पर हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिन का एक्शन कॉन्क्लेव कल से पेरिस में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो सम्मेलन की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, उद्योगपति और शोधकर्ता शामिल होंगे। फ्रांस में अपने कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान व्यापार, रणनीतिक सहयोग और प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी संवाद होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमास से सभी इजरायली बंधकों को तत्काल रिहा करने को कहा है। हमास द्वारा 490 दिनों से बंधक बनाए गए 3 बंदियों की वापसी के बाद मार्को रूबियो ने यह बयान आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मार्को रूबियो ने कहा है कि तीनों इजरायली बंधक अपने घर पहुंच गए हैं, अब हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना होगा। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर तीन अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस बीच महाकुंभ मेले में जल जीवन मिशन मंडपन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पैविलियन में ग्रामीण जीवन पर इस मिशन के प्रभाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण इलाकों में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। काशी तमिल संगम का तीसरा संस्करण इस महीने की 15 तारीख से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय ऋषि अस्थेयर होगा। प्रतिभागियों को महाकुंभ का अनुभव भी होगा और अयोध्या में राम मंदिर में भी दर्शन होंगे। 52वां विश्व पुस्तक मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपन में संपन्न हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिन के इस मेले का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय और भारत व्यवसाय संवर्धन संगठन ने इसका आयोजन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मेले में लगभग 2000 से अधिक प्रकाशकों और 1000 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिला प्रशासन ने माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के आधार शिविर कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, उसे रखने और सेवन पर प्रतिबंध को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार कटरा से त्रिकोटा पहाड़ी पर पवित्र गुफा तक 12 किलोमीटर के मार्ग और आसपास के इलाकों में भी निषेध आज्ञा लागू रहेगा। केंद्र शासित लद्दाख को कश्मीर और उसके आगे जोड़ने वाले जोजिला दर्रा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 श्रीनगर लेह राजमार्ग 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के बावजूद यह दर्रा 1 फरवरी के दौरान खुला रहा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कल अगरतला में डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव में 87 निजी निवेशकों के साथ 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मानिक शाह और राज्य के उद्योग मंत्री सानंद चकमा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार देश विदेश के निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निवेश शांतिपूर्ण माहौल चाहते हैं और त्रिपुरा सरकार कंपनियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री शाह ने यह भी कहा कि राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक कंपनियों को 30 दिन के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी और कम दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में उद्योग की स्थापना के प्रायोजन से उपयुक्त स्थान की तलाश के लिए लैंड बैंक स्कीम की शुरुआत भी की। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ईओन 51 नामक ऑप्टिकल फाइबर नियंत्रक प्रणाली की खरीद की जाएगी, जिससे लक्ष्यों की खोज में मदद मिलेगी। इस समझौते से 3 वर्ष के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों को भी बल मिलेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।